हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रोहान को जब लगा कि अंदर से फिर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने अपना गला सही करते हुए कहा, मैडम जी, क्या आप अंदर हैं? उसका इतना बोलना ही था कि निवेदिता ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उम्मीद भरी नज़रों से रोहान को देखने लगी। उसके होठों पर मुस्कान थी और आँखों में हल्की सी नमी। रोहान ने आँखें उठाकर सामने देखा और निवेदिता को देखकर उसका चेहरा जैसे डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसने घबराते हुए दो कदम पीछे हटा लिए। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वहीं जब अनाही ने देखा कि रोहान बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, तो वो जल्दी से निवेदिता की साइड से कमरे से बाहर आई और रोहान का हाथ पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं आपके बिना बताए। रोहान ने धीरे से अनाही के चेहरे को देखा, अनाही भी उसी की तरफ देख रही थी। रोहान के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। निवेदिता ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली थीं। उसे बहुत बुरा लग रहा था अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखकर। वो देख सकती थी रोहान का चेहरा इस वक्त किस हद तक सफ़ेद पड़ चुका है और उसके कांपते होंठ बता रहे थे कि उसे बहुत तकलीफ़ हुई है निवेदिता के कमरे तक आने में। निवेदिता ने अंदर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके साथ ही रोहान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अनाही ने उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, आप इतनी छोटी सी बात पर इस तरह पैनिक कैसे कर सकते हैं? वो उसे कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देती है और फिर जल्दी से पानी का गिलास उसके सामने करते हुए उसके करीब बैठ जाती है। रोहान भी वो पानी पी लेता है, पर उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। अनाही जल्दी से रोहान को अपने गले से लगाते हुए उसके सर को सहलाकर बोलती है, रोहान जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? प्लीज़ पैनिक करना बंद करिए, कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी वो आपकी मॉम है, आप कब तक उनसे बच सकते हैं? गलती सबसे होती है, बड़ों से भी और छोटों से भी। जब छोटे बच्चों से गलती होती है, तो उन्हें बड़े कितनी जल्दी माफ़ कर देते हैं। आप भी अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा बनाइए और मम्मी जी के लिए अपने दिल में जगह बनाइए। रोहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस अनाही की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। वो खुशबू जैसे जैसे उसके जहन में उतर रही थी, उसके दिल को ठंडक मिल रही थी। उसके दोनों हाथ अनाही की कमर पर कसे हुए थे और उसकी पलकें भी भीग चुकी थीं। वो धीरे धीरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अनाही की नरम उंगलियां उसके बालों में घूम रही थीं। अनाही को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए जिससे रोहान जल्दी शांत हो जाए। थोड़ी देर बाद अनाही ने रोहान का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसे अपनी आंखों के सामने किया और फिर आहिस्ता से आगे बढ़कर अपने ठंडे होठों को उसके माथे पर टिका दिया। वो उसे धीरे से चूमते हुए उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। रोहान अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अनाही ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके माथे पर आए पसीने को पोंछा। रोहान ने अनाही के खूबसूरत चेहरे को एक तक देखते हुए धीरे से कहा, आई फील बेटर मैडम जी, क्या अब हम कुछ और डिस्कस कर सकते हैं? मुझे लगता है इस टॉपिक पर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अनाही की आंखों में एक बार फिर उलझन आ गई। हर बार की तरह रोहान ने इस बार भी निवेदिता के टॉपिक को साइडलाइन कर दिया था। अनाही ने रोहान के सर से सर जोड़ते हुए आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कहा, आप कब तक भागेंगे इस टॉपिक से? करने को हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं रोहान जी, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। ना तो आप मम्मी जी से नाराज़ होकर खुश हैं और ना ही मम्मी जी आपसे नाराज़ होकर खुश हैं। तो ये नाराज़गी क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, या फिर आप ये सोचकर ही सैटिस्फाइड हो रहे हैं कि आपकी वजह से आपकी माँ परेशान है जिसने कभी आपको परेशान किया था? क्या एक बार आप मम्मी जी की उस कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं जब उनके पति का कत्ल हो गया था और उन्हें हर रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे? वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, आपको कैसे संभाल पाती? उस वक्त वो उतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी लोगों को लग रही थी। उनकी उम्र यही कोई 25-26 साल होगी और मुझे नहीं लगता जब मैं इस उम्र में हूँ तो मैं इतने क्रिटिकल टाइम में खुद को सर्वाइव करने के लिए राजी कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता मैं मम्मी की जितनी स्ट्रांग हूँ। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए आपकी मॉम कितनी स्ट्रांग है, उन्होंने कितना कुछ किया था, वो सिर्फ आपको पैम्पर नहीं कर पाई। और मेरे हिसाब से एक छोटे से बच्चे के दिल में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत आ ही नहीं सकती है। फिर किसी न किसी ने तो आपको जरूर कुछ कहा होगा जिस वजह से आप मम्मी जी को इस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हों तो मुझे बता सकते हैं क्या किसी ने आपसे कुछ कहा था उस वक्त? रोहान ने हैरानी से अनाही के चेहरे को देखा। अनाही में कितनी समझदारी थी, अब उसे समझ आ रहा था। वो सिर्फ उम्र में उससे बड़ी नहीं थी, उसकी मैच्योरिटी भी उससे बहुत ज़्यादा एडवांस थी। रुहान ने नज़र झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैडम जी, आपकी इन सारी बातों का क्या मतलब निकल रहा है। मुझे भी इसी बात का दुख है कि सबको सिर्फ अपनी कंडीशन दिखती है, दूसरों की नहीं। सब अपना मूड किसी और पर क्यों थोपना चाहते हैं? मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा। अगर मैं किसी और चीज़ पर गुस्सा होता हूँ तो उस पर गुस्सा निकालता हूँ। मैं अपने चाहने वालों को दर्द नहीं देता हूँ, जैसा मॉम ने किया था। अगर उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने थे तो वे मुझे प्यार से समझाकर जा सकती थीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बोलते बोलते रुहान की आवाज़ कांप उठी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो आई थीं, जैसे वो किसी भी पल रोने लग जाएगा। अनाही ने उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि उन्हें आपको प्यार से ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन वो उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थीं कि वो ये सब समझ पाएं कि क्या गलत है और क्या सही है। और मैं अभी भी यकीन के साथ कह सकती हूँ, एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा से नफरत नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में नहीं। अगर वो उसको दो थप्पड़ लगा दे तब भी नहीं। और मम्मी जी ने तो आप पर हाथ भी नहीं उठाया था, उसके बावजूद आपको उनसे इतनी ज्यादा नफरत हो गई है। जरूर किसी न किसी ने तो उनके खिलाफ आपके दिल में जहर घोला है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अनाही जो कुछ बोल रही थी, अगर वो पहले बोलती तो शायद रुहान हो उस पर गुस्सा आता, पर फिलहाल तो रुहान अपनी मैडम जी को इतना पसंद करने लगा था कि उसे अनाही की किसी बात का बुरा नहीं लगता। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, पर मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको ये लगता है कि सिर्फ मैं उनके प्यार के लिए मर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे पास आप हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इतना बोलते हुए रुहान ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह अनाही को अपने गले लगा लिया। अनाही ने गहरी सांस छोड़ी और फिर रुहान की पीठ को सहलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आपको उनकी जरूरत नहीं है, पर उनको तो आपकी जरूरत है ना। आज जब आप उनके दरवाजे के सामने जाकर मुझे पुकार रहे थे, उनकी आंखों में आई चमक आपने देखी, वो कितना खुश हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर कि आप उनके दरवाजे के सामने आए हैं।
रुहान ने चिढ़ते हुए कहा, मैडम जी, मेरे पास सिर्फ आप हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उनकी साइड लो। प्लीज आप मेरे पास ही रहो, आप हमेशा मेरी तरफदारी करो, किसी और की नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अनाही ने अपने एक हाथ को उसके बालों में उलझाते हुए कहा, मैं आप ही की साइड हूँ, अगर किसी और की साइड होती तो अब तक आपको डांट फटकार कर सब कुछ समझा चुकी होती। पर एंड आई नो आप कैसे हैं, अगर मैंने कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो पता नहीं आप पर क्या गुजरेगी। लेकिन एक बार आराम से मेरी बातों को ज़रूर सोचना, और एक बार, सिर्फ एक बार समझने की कोशिश करना कि वाकई में आपकी मम्मी ने आपके साथ इतना गलत किया है जितना आपको लगता है, या सिर्फ आपका वहम है, या आपका ज़िद्दीपना है। इतना बोलकर अनाही उससे अलग हुई और फिर उसकी आंखों के कोने पोंछते हुए मुस्कुरा कर बोली, अब हम डांस मूव सिलेक्ट करते हैं, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे, आप रोना बंद करो।